ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। स्वामी रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि तथा गीतकार गुलजार को पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति ने ज्ञानपीठ पुरस्कार को साहित्य में एकता का प्रतीक बताया।
भारतीय ज्ञानपीठ इन दो शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। ये एकता पूरी भारत में व्याप्त भावनात्मक सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता की अभिव्यक्ति है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भारत की मिट्टी की महक होती है।
स्वामी रामभद्राचार्य ने पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साहित्यिक कार्यों को मान्यता मिली है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है कि वो पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में दोबारा विचार करे। गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आतंकवादी ढांचे को खड़ा करने में लगाएगा।
IMF द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूँ कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और हमारी तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। उन्होंने खुफिया जानकारी साझा करने के उद्देश्य से दिल्ली में आज नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जब वह भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों को सौंप देगा। इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से भागकर पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकवादी भी शामिल हैं। हैदराबाद में उन्होंने कहा, आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये की आलोचना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प की पहली वानगी है। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में बताया है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस कूटनीतिक पहल पर बात की है। देश भर के 125 से अधिक शीर्ष व्यवसायियों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ यात्रा, पर्यटन, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये निर्णय पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन और आतंकी शिविरों पर भारत के हमले की आलोचना के परिणाम स्वरूप आए हैं। आयरलैंड ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन हैरिस ने संसद में कहा कि बलूचिस्तान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिए जाने की बढ़ती संख्या की निंदा की है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में बैठक चल रही है। पिछले 3 साल में यह पहला मौका है जब दोनों देश सीधी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वार्ता में शामिल नहीं हैं। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 42 अंक गिरकर 25,020 के स्तर पर बंद हुआ। भाला फेंक में वर्तमान विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज कतर के दोहा में डायमंड लीग प्रतियोगिता में खेलेंगे। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपचेलस और गुलवीर सिंह पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।